क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाती है।
मरियम की बातें, मरियम की बातें।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تو پیاری بچو، آج ہم ذکر کریں گے اس باغداد کا جو سب کا خالق و مالک ہے، جس کا ذکر دلوں کا سکون ہے، جس کا ذکر باعث سے برکت ہے، جس کا ذکر کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے. انسان چاہ کر بھی اپنے پاک پروردگار مالک و مختار اللہ پاک کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، صرف اس کی نعمتوں کا ذکر اور شکر کر کے اس کی کرم اور مزید نعمتوں کا حقدار ضرور بن سکتا ہے. قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں اللہ پاک نے اپنی شان خود بیان فرمائی ہے کہ جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی. مسلمان ہونے کے لیے ان تمام باتوں پر ہمارا ایمان لازمی ہے. اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کوئی نہیں جو اس کی اجازت کے بغیر کچھ کر سکے. وہی عبادت کے لائق ہے، یعنی ہم سب کو صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ایک وقت ایسا بھی تھا جب اس کی ذات اور صفات کے سوا کوئی اور چیز نہ تھی، پھر سب چیزوں اسی نے پیدا کی. سب سے پہلے اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ پاک نے ایک ایک کر کے کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا، اور اس کے لیے اسے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. قرآن پاک میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے، یعنی اللہ پاک کا صرف کہہ دینا کافی ہے. اللہ پاک نے اپنی قدرت سے یہ لامحدود آسمان، دور دور تک پھیلی ہوئی زمین، چمکتا دمکتا سورج، روشن چاند، جل ملاتے ستارے، اونچے اونچے پہاڑ، بڑے بڑے سمندر، بہتے ہوئے دریا، سردی گرمی اور مختلف قسم کے موسم، ہوائیں، بادل، بارش، انسان، جنات، فرشتے، مطلب یہ کہ کائنات کی ہر ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے. وہی سب کو پالنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارا جہاں اس کا محتاج ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، اس کے ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، وہ ایسی تمام چیزوں سے پاک ہے. اللہ پاک موت اور زندگی کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس میں ہر کمال اور خوبی پائی جاتی ہے، اور وہ ہر طرح کے عیب اور برائی سے پاک ہے. اسی طرح وہ نیند، اونگ اور تھکاوٹ جیسی چیزوں سے بھی پاک ہے. وہ ہر ظاہر اور چھپی شے کو جانتا ہے، اور ہر ہلکی سے ہلکی آواز کو سنتا، اور ہر باریک سے باریک چیز کو دیکھتا ہے. بلکہ وہ تو دل کے رازوں، ارادوں، وسوسوں اور خیالات کو بھی جانتا ہے. وہ جسم سے پاک ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. وہ اچھے کاموں سے خوش اور برے کاموں سے ناراض ہوتا ہے. وہی مظلوموں کی مدد کرتا اور بیماروں کو شفا دیتا ہے. اس کے غضب سے ہر دم ڈرنا چاہیے، کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اس کا ہر کام حکمت بھرا ہے، وہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، اس کی رحمت دکھی دلوں کا سہارا ہے. اور یہ تمام باتیں ہماری بنیادی عقیدے کا حصہ ہونی چاہیے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین.
دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں، ہم کو کیا کیا سکھاتے ہیں.
مریم کی باتیں، مریم کی باتیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله.
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله.
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كثير أبصب.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين على كل حال. تو پیاری بچوں ہم اپنا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں ایک پیاری سی نعت سے. چما خطوط سے پانے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکارے چمکارے
سلیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ.
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ.
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
درود پاک کی فضیلت. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیاری بچوں آج میرے بیان کا ٹاپک ہے صفائی اور پاکیزگی. پیاری بچوں صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے. بہت ساری حدیثوں میں صفائی کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا अल्लाह पाक है पाकी पसंद फरमाता है, सुतरा है सुतरा पसंद फरमाता है, लिहाजा तुम अपने सहन साफ रखो। अल्लाह पाक बंदे की नजर आने वाली और दिखाई ना देने वाली पाकीज़गी पसंद फरमाता है। इस हदीस की रोशनी में हमें चाहिए कि हम हर तरह पाक साफ रहें, जिससे हम ख्याल रूप लिबास अखलाक मतलब के हर चीज को पाक साफ रखें, अपनी बातों को अपने किरदार को अपने अमाल और अकायद को सही रखें। इस हदीस में अपने जहन साफ रखो का मतलब है कि अपने घर तक साफ रखो। लिबास बदन वगैरह की सफाई तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हमें अपने घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। वहाँ कचरा गंदगी नहीं जमा होने देना चाहिए, खुद भी कचरा नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी कचरा करने से मना करना चाहिए। इस्लाम हमें हर तरह की सफाई सिखाता है। इस तरह मुंह की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा मुंह साफ नहीं होगा तो हम जो भी खाएंगे तो उसके साथ वो सारे जरासीम हमारे पेट में जाकर तरह तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इस्लाम में मुंह की सफाई को बहुत अहमियत हासिल है। एक हदीस में बिलखुसूस मुंह की सफाई के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुंह को मसवाक के जरिए साफ रखो, क्योंकि ये कुरान का रास्ता है। एक और हदीस में कुछ लोग गंदे दांतों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक किया करो और मेरे पास मेरे कुछ अल्ले दांतों के साथ नहीं आया करो। अगर मुझे उम्मत की मुशक्कत का लिहाज ना होता तो मैं उन पर हर नमाज के वक्त फर्ज कर देता। अल्लाह पाक हमें साफ सुथरा रहने और हमारे दीन ने सफाई के हवाले से जो तालीम दी है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
तो प्यारी बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फिक्र साबियात। तो जिक्र साबियत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहजादी ज़ैनब। जी शहजादी ज़ैनब।
प्यारी बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी साबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका नाम बीबी अस्मा बिनते अबू बकर है। तो आज हम इनके बारे में कुछ बातें सुनेंगे। आपका नाम बीबी अस्मा बिनते अबू बकर है। आप हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी और हजरत बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बहन थी। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा से पहले 17 लोग ईमान लाए थे और आप रजी अल्लाह तआला अन्हा 18वीं थी जो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने 100 साल की उम्र पाई। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफात 28 जमातुस्सानी रमजान मुबारक सन 73 हिजरी को हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आपके साहबजादे यानी बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार मुबारक के बराबर में दफन किया गया, जो कि मक्का मुकर्रमा में वाक़े है।
सुभान अल्लाह, क्या बात है। बीबी अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, अल्लाह पाक हमें बीबी अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चों, अब बारी एक अच्छा काम सीखने के और हम एक बुरे काम के बारे में भी जानेंगे। तो चलें, हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाजमीन। जी शाजमीन।
आज मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगी और वो अच्छी बात है इल्मे दीन सीखना। प्यारी बच्चियों, इल्मे दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। इसके बगैर ना तो हम ये जान सकते हैं अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हम पर क्या क्या फर्ज किया है और इस फराइज को कैसे अदा करना है, और ना हमें ये पता चल सकता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर किस तरह अमल करना चाहिए। हमें बचपन ही में इल्मे दीन को हासिल करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, जिसका एक आसान जरिया मदनी चैनल के देखना भी है, जिसके प्रोग्राम के जरिए बच्चे और बच्चियां डेली बेसिस पर आसान अंदाज में इल्मे दीन सीख सकते हैं। मकतबतुल मदीना की वो किताबें जो बच्चों के लिए लिखी जाती है, उनसे भी हमें ढेर सारा इल्मे दीन हासिल हो सकता है। अल्लाह पाक हमें ज्यादा से ज्यादा इल्मे दीन सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हूँ। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ एक बुरी बात के बारे में, बिला वजह बोलना। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चियों की आदत होती है कि वो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। ऐसी बच्चियों को घर वाले बातूनी भी कहते हैं। बिला वजह फजूल की बातें करना अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए कि जितना हो सके कम से कम बातें करें और फालतू बातें बिल्कुल भी ना करें। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के इस्लाम की खूबी ये है कि बेकार बातें छोड़ दें। तो प्यारे बच्चों, हमें इस बुरी बात से बचना चाहिए। अल्लाह पाक हमें बुरी बात से बचने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन। इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और करते हैं कुछ बातें कनीस फातिमा से भी। कहीं बात में नमाज पढ़ने का क्या फायदा है?
नमाज पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि नमाज पढ़ने वाले से अल्लाह पाक खुश होता है। और जब हम दिन में 5 बार नमाज पढ़ने के लिए वजू करते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं, तो इससे हम फ्रेश हो जाते हैं और एक्टिवेट भी हो जाते हैं।
कनीस फातिमा, क्या नमाज पढ़ने से हम बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं?
क्यों नहीं, नमाज पढ़ने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वो इस तरह कि जब हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक हमसे खुश होगा और फिर जब हम उससे दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी दुआ भी कबूल फरमाएगा और यूँ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।
कनीस फातिमा, जब नमाज पढ़ने से हमें ये फायदे मिलते हैं तो फिर बच्चे नमाज क्यों नहीं पढ़ते?
असल में शैतान नहीं चाहता कि हम नमाज पढ़ें और अच्छे बच्चे बन जाएं। अल्लाह पाक हमसे खुश हो जाए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसलिए शैतान हमें बहकाता है और नमाज पढ़ने से रोकता है। तो हमें हर हाल में नमाज पढ़नी चाहिए और शैतान की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए।
जज़ाकअल्लाहु खैरा कनीस फातिमा। तो प्यारी बच्चियों, पता चला कि नमाज तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। हमें तो कभी भी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि हम बच्चों और खवातीन को चाहिए कि हम घर में ही नमाज पढ़ने के लिए एक अलग जगह बना लें और 5 वक्त वही नमाज पढ़ा करें। अल्लाह पाक हमें 5 वक्तों की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छा अखलाक। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है जोहा। जी जोहा।
अच्छे अखलाक में आज का हमारा टॉपिक एक ऐसी चीज है जिससे बचकर हम अपने अखलाक को और भी अच्छा कर सकते हैं। चुगली यानी किसी की शिकायत इसलिए करना ताकि इसको डांट पड़े। प्यारी बच्चों, अल्लाह पाक की शान है कि अल्लाह पाक अपने बंदों की बुराइयों को दूसरों से छुपाता है ताकि वो दूसरों के सामने शर्मिंदा ना हो, और साथ ही साथ बुरे कामों से बचने का हुक्म भी देता है और इन बुरे कामों के अजाब से डराता भी है ताकि इसके बंदे बुरे कामों से बचें और अच्छे अच्छे काम करके जन्नत में जाएं। इसी तरह हमें भी चाहिए कि बिला वजह किसी की चुगली यानी शिकायत ना करें। अगर किसी की कोई बुरी बात हमें पता चल जाए तो हमें पहले तो उसे समझाना चाहिए कि वो बुरी बात ना करे, लेकिन अगर वो बात ना माने तो उसके बारे में इस नियत से अम्मी अबू को बताया जा सकता है कि वो इसकी तरबियत करें और इस तरह से वो इस बुरी बात को करने से बच जाए। लेकिन सिर्फ मजाक डांट के एंजॉयमेंट के लिए किसी की भी बुराई को दूसरों के सामने लाना या उसकी शिकायत लगाना बहुत बुरी बात है, जो बात पर सबकी चुगली लगाते हैं यानी शिकायत करते हैं, उन्हें सब लोग चुगलखोर कहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। ये आदत अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं और ऐसे बच्चों को कोई पसंद भी नहीं करता। अल्लाह पाक हमें ऐसा बना दे जैसा उसे पसंद है।
आमीन।
जज़ाकअल्लाहु खैरा।
प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवाल जवाब। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है सैयदा फातिमा। जी सैयदा फातिमा,
मेरा पहला सवाल है, कुरान पाक किस जबान में नाजल हुआ?
क्या क्या बताती है हमको, क्या क्या सिखाती है मरियम।
जी मेरा जवाब बताइए।
कुरान पाक अरबी जबान में नाजिल हुआ।
आपका जवाब दुरुस्त है। खाना कौन से हाथ से खाना सुन्नत है? जी जोहा आप बताइए।
सीधे हाथ से खाना सुन्नत है।
आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक कौन से शहर में है? जी शाजमीन आप बताइए।
मदीना शरीफ में।
आपका जवाब दुरुस्त है। बताइए।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत कौन से महीने में मनाते हैं? देखो क्या क्या बताते। जी मुनीब आप बताएं।
लव यू हैव।
आपने कहा रवि अलवल। आपका जवाब दुरुस्त है। फजर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? जी शाबाबी आप बताइए।
चार, दो सुन्नत दो फर्ज।
आपका जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक की सबसे पहली सूरह का नाम क्या है? जी मेरा जवाब बताइए।
सूरह फातिहा।
आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? जी शाजमीन आप बताइए।
अल्लाह सबसे बड़ा है।
आपका जवाब दुरुस्त है।
तो प्यारी बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है दुआ। आज मैं आपको पानी पीने से पहले और बाद की दुआ बताऊंगी। जब भी हम पानी पिए तो पानी पीने से पहले हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। और पानी पीने के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का। तो प्यारी बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है घर की नेकी।
देखो क्या क्या बताते हैं हमको क्या क्या सिखाते हैं।
सलात व सलाम अलैका रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका हबीब अल्लाह। सलात व सलाम अलैका नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के रोज अल्लाह पाक के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। लोग अल्लाह पाक के अर्श के साये में होंगे। किसी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो मेरी उम्मती की परेशानी को दूर करे, मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि अल्लाह पाक ने नमाज तमाम मुसलमानों पर फर्ज की है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, कियामत के दिन बंदे के अमाल में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। अगर वो दुरुस्त हुई तो उसने कामयाबी पाई, और अगर उसमें कमी हुई तो वो रुस्वा हुआ और उसने नुकसान उठाया। तो प्यारे बच्चों में बचपन से ही नमाज सीखकर उसे पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। छोटे बच्चों पर वैसे तो नमाज फर्ज नहीं होती, लेकिन अगर शुरू से ही हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदत होगी तो यह हमारी जिंदगी का एक जरूरी पार्ट बन जाएगी। तो आज हम सब ने यह कोशिश करनी है कि अपने अपने घरों में अकेले अम्मी या बाजी के साथ 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें। अल्लाह पाक हमारी नमाजों की हिफाजत फरमाए और हम सबको पक्का नमाजी बनाए। आमीन।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है गोल्डन वर्ड। तो प्यारी बच्चों, इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है दोहा।
वी शुड नॉट बी अरोगेंट अबाउट अवर थिंग्स। हमें अपनी चीजों पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी अरोगेंट अबाउट अवर थिंग्स। हमें अपनी चीजों पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी अरोगेंट अबाउट अवर थिंग्स। हमें अपनी चीजों पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ अवर वेल्थ। हमें अपने मालो दौलत पर फख्र नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ अवर वेल्थ। हमें अपने मालो दौलत पर फख्र नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ अवर वेल्थ। हमें अपने मालो दौलत पर फख्र नहीं करना चाहिए। अब सारी बच्चियां मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगी।
वी शुड नॉट बी
arrogant about
our things.
हमें अपनी चीजों पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। We should not be arrogant about our things.
हमें अपनी चीजों पर
तकब्बुर नहीं करना चाहिए। We should not be
proud of our wealth.
हमें अपने मालो दौलत पर पकड़ नहीं करना चाहिए। We should not be
proud of our wealth.
हमें अपने
मालो दौलत पर
फख्र नहीं करना चाहिए। अब कौन सी बच्ची मुझे पढ़कर सुनाएगी? जी साइना, है आप सुना?
वी शुड नॉट बी एरोगेंट अबाउट अवर थिंग। हमें अपनी चीजों पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए।
अब दूसरा कौन सी बच्ची मुझे पढ़कर सुनाएगी? जी मेरा बाप बताएं।
वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ अवर वेल्थ। हमें अपने मालो दौलत पर फख्र नहीं करना चाहिए।
तो प्यारी बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म होता है। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं।